The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور Allah. Dear viewers of Madini channel, welcome to our transmission once again, part to success. And Alhamdulillah Azza wa Jal, we have our Muballighin, Mashallah, Taqir bhai and Rizwan bhai with us. And Harun bhai bhi hamare saath hain, Alhamdulillah. And Shahid bhai aaj hamare saath silsile mein honge. To recite Durood-e-Pak of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam brings many, many virtues and blessings. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, the person who desperately needs something should recite Salat upon me in abundance because it removes difficulties and troubles, increases sustenance and fulfills the needs. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی بھی پریشانی مشکلات ہو درود پاک کی کثرت کر لے, پریشانی تو دور ہوگی ساتھ میں برکت بھی ملے گی رزق کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل ٹوڈے وی ول ڈسکس اندر امیزنگ ٹاپک از اباؤٹ این اسلامک سوسائٹی. اینڈ ریمبر آئیڈیل سوسائٹی آلویز از اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی ہی آئیڈیل سوسائٹی ہے. یہ کس طرح ہوتی ہے, اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ وی ول ڈسکس اباؤٹ دس. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوں گے اور آلسو انشاءاللہ آج سائن لینگویج کا بھی سلسلہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک. انشاءاللہ ہمارے ہارون بھائی ول ریسائٹ تلاوت قرآن پاک ٹوڈے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ سبحان
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا قلت حيلتي أنت وسيلتي قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله ادرکنی یا رسول اللہ گھٹائے غم کھینچائے دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائے غم کھینچائے دل پریشان یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہِ وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله
سبحان الله سبحان الله. We'll start our topic with our talkir by an Islamic society. No doubt an Islamic society is an ideal society.
MashaAllah, very beautiful topic. Like majority of our topics on our path to success, the topic is a very vast topic. And there's many things that can be said about it. I would like to start with one point, and that is a very important pillar of our religion of Islam. And that is the pillar of Salah. An ideal Islamic society, it will consist of namazis, musallis, people that are offering salah. A society that is free from people that are missing their salah, this is an Islamic society. And not only this, in addition to them reading their salah, alhamdulillah, our masajid becoming filled with these namazis, where so many people are going to the masjid to read their salah. Alhamdulillah, this is an Islamic society. And this is just one aspect of what an Islamic society consists of. When we're talking about the masjid, alhamdulillah, in addition to this, we have to obviously recognize that when in the Islamic society, the azan will take place. From the masjid, what we hear from the pious predecessors rahmatullah ta'ala alayhi is that when the azan would take place, they would stop all actions and they would make their way and make preparations for salah. And this is what an Islamic society will require as well. For example, to the pious predecessors, it is mentioned about them that if there was a cobbler, a shoemaker, if he put the needle inside the piece of leather, he wouldn't take that needle out, or he wouldn't take it through completely. He would just leave it there, drop it, and off he goes. If someone was making a blacksmith, making iron or something, and he lifted the hammer to strike that piece of iron, he wouldn't drop it onto strike. Rather, he would lower his hand, put the hammer down to the side, and make his preparations towards offering his salah. This is what an Islamic society requires. And inshallah ta'ala, if we get to this level of an Islamic society, all of these things we will see back in our society as well, inshallah ta'ala. Many people will think that how is it possible to make this society make this Islamic society? Amir al-Sunan Dawud Barakatum al-Aliyah, he always mentions a very beautiful statement, the fard se muashra banta hai. An individual makes the society. If every single one of us thinks about ourselves and our own household, then inshallah ta'ala, this will have a ripple effect on the rest of the society, inshallah. If I focus on my own self-reformation, my own betterment, the betterment of my direct household, inshallah ta'ala, this will have an effect on the next door neighbors, the neighbors and the entire society will inshallah become a better place as well, inshallah.
MashaAllah, kya baat hai ji. Bilkul fard se maashara banta hai. Everybody need to start looking themselves rather than other people, because the problem is we all want the ideal society, an Islamic society where the love, you can find the peace, harmony, and also helping each other, logon ke kaam aana, logon ki izzat mehfooz ho. Lekin ye cheeze dusron mein talash kar rahe the. We don't find these things within our own self. जब तक हम अपनी इस्लाह की तरफ नहीं आएंगे, सिर्फ बातें करते रहेंगे, तो बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से होता है. तो इस्लामिक सोसाइटी इज एन आइडियल सोसाइटी है, और इसके अंदर प्यार होता है, मोहब्बत होती है, मुआफ करना होता है, दरगुजर करना होता है, नमाजों की पाबंदी. नमाज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई सो इम्पॉर्टेंट? इसलिए कि ये बेहियाई से रोकती है. अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ रहे होंगे, फिर पंचुअलिटी भी नमाज लेकर आती है. नमाज बीमारियों से बचाती है. नमाज एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ाती है. नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है. नमाज पढ़ने से यकीन करें, तो जिस्म होता है, ये एक एक्सरसाइज मिलती है उसको. जिस्म का एक एक आज़ा जो है वो हरकत में आता है. सजदे में जाते हैं तो उसकी अपने मेडिकल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले तो वो उसकी अलग बेनिफिट है. लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं. मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, लॉजिकल बात करने से बेहतर है, इस्लाम की हर बात में कुछ ना कुछ है. और इतनी चीजें अगर हम खोलते जाएंगे तो आपकी लॉजिक फिर भी थोड़ी सी रह जाएगी. इस्लाम के अंदर इतना कुछ है. तो हमें ये चाहिए कि अपनी सोसाइटी को इस्लामिक सोसाइटी की तरफ लेकर आए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुकून और बरकतें आएंगी. अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ शाहिद भाई विद अस, माशाल्लाह.
माशाल्लाह साहब, तो किरबाज गिवन ब्यूटीफुल मंदी पहले बात सलाह. ईक्ली वी आल्सो नीड टू फाइंड अप ऑन आवर कैरेक्टर एज़ वेल. Because people judge a person according to their character, what they see. They don't know what a person is really like. They only look at the person's action. And whatever person portrays, that's what the people imagine that this person is like. And if we follow the teachings of the Quran and Sunnah the way we should be, a beautiful gift which Amir Sunnah has given us is Nek Amal. If we act upon that accordingly on a daily basis, we'll be able to reform our character in such a way that we can show people what Islam is really like, how a person should be, and how the society should be. In this aspect, we need to first of all act upon this ourselves, make those changes within ourselves first. Once we realize that some changes have come within ourselves, we can get our families, our neighbors, and the rest of the community. In this way, inshallah, the rest of the society will automatically begin to come into fold of that change as well. But important thing is our character. If we change our character, it will make a significant difference.
چلے جی کیریکٹر کی بات کی ہے شاہد بھائی نے یہ بھی اسلامک سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے ایچ پرسن اون کیریکٹر کیا ہے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے اپنے کیریکٹر کے بارے میں نرمی ہے یا نہیں ہے پولائٹنیس ہمبلنیس جینٹلنیس جن کو بھی آپ لیتے جائیں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک کسی مسلمان کی ناحق بےزتی کرنا تو چلتے پھرتے بےزتی کر دیتے نا بےزتی سمپل انسلٹ ڈونٹ انسلٹ اینی مسلم پلیز اس کو ریئلائز کرے میرے آقا نے فرمایا کسی مسلمان کی ناحق بےزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے میجر سن ہے اور چلتے چلتے اس کی برائی چلتے چلتے اس کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ وہ جو ہے نا وہ اسپائی بنا ہوا ہوتا ہے رضوان بھائی دوسرے لوگ اپنا نہیں دیکھ رہا میرے گھر میں کیا پرابلم ہے میرے گھر کے اندر کتنی فالٹ ہیں یہ بھی اسلامک سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہوتی اسلامک سوسائٹی میں تو پیار ہوتا ہے لوگوں کے ایپوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے یا کہ لوگوں کی جاسوسی کرنا ہوتا ہے قرآن پاک میں بھی یہ والا تجسس اور تجسس میں نہ پڑھو لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی سوشل میڈیا پہ ڈھونڈا ہوگا اس نے کیا ڈالا ہے کوئی سٹیٹس کے ذریعے ڈھونڈا ہوگا کیا ہے کوئی ذرا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہا ہے ذرا میں معلوم تو کروں بھائی دوسروں کا معلوم کرنے کی بجائے اسلامک سوسائٹی کے اندر انسان اپنی اصلاح پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں دوسرے کے گناہوں کو ڈھونڈنے سے ٹٹولنے سے اچھا ہے اس کی اچھائیوں کو ٹٹولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے کے اندر امن اور سکون آئے گا
Ji, mashallah, it's a very important topic and a topic that we talk about regularly, but I wanted to just explore what we think an Islamic society is, because no doubt my thinking of an Islamic society might differ from, for say, Tokir Bhai's or yours or Shahid Bhai's. And when we say Islamic society, what are we aspiring to? Have we ever achieved an Islamic society in the past? Is there an era in the past that was a true example for us? Or is there a country? There's many Islamic countries around the world. Is there one of them that's, or all of them, that are Islamic societies? Or is it something that we are aspiring to? Is it a time that will come? For example, some people think that the azan, as you mentioned, when the azan is being called in a country, that's an Islamic society. That's ideal society because it gives you that, it reminds you to go to the masajid to read the salah. And some people will think where you've got parda, etc., where you've got the veiling and the men and the women are very aware of modesty and those rules, that's an Islamic society. But there's others, unfortunately, and this is Muslims, that will perhaps think that some of these things that the Quran and Sunnah is telling us that form part of an Islamic society are maybe too much for them to adopt in current society in the Western world, and maybe they think that they some of these things are too extreme. So where are we looking at, and what's our ideal for an Islamic society? And that's something that I wanted to just see if we could try and discuss that. Is there an ideal country, environment? Is there a time in the past that we're looking to aspire to achieve before we go into what we can do to get to that?
MashaAllah. چلے جی کہاں ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ سوچنے کا لیکن اسلامی سوسائٹی وہی ہے جس کے اندر اللہ عز و جل کی احکامات کی اطاعت کی جائے میرے آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور اسلام نے جو بھی بتایا وہ حق اور سچ بتایا ہے اور وہ چیزیں جب ہم لے کر آئیں گے تو واقعی سوسائٹی جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی بنے گی اور اچھی سوسائٹی کے لیے اسلامک رول ہی ضروری ہیں یہ یاد رکھیے گا اچھا بننے کے لیے اچھا بنانے کے لیے और अच्छे सराउंडिंग के लिए आपको इस्लाम को ही अपने ऊपर नाफिज करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। सारी कामयाबियां, सारी तरक्कियां इस्लाम के दामन के अंदर आने से मिलती है। इस्लाम से हटकर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। जो इधर ढूंढ रहे होते हैं ना, वो बेचारे ढूंढते ही रह जाते हैं, और जो वाकई ही ढूंढते हैं कि वाकई हमारे इस्लाम ने क्या बताया है, उस पर अमल करते हैं, अहादीस पर अमल करते हैं, सुन्नतों पे अमल करते हैं कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो है ये इनका फरमान है, इस पर अमल करेंगे तो ये बरकतें मिलेंगी। आप देखेंगे कि वो सुकून के अंदर होंगे। और जो कभी इधर जा रहे होते हैं, वो कहते हैं ना, दो कश्तियों में जो पाँव रखता है तो उसने गिरना ही होता है। अपने इस्लाम के अंदर आ जाए, दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, तो आइडियल सोसाइटी बहुत हमारे जमा गुजरे हैं। आज़त उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के आवत देखें, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम का आइडियल जमाना, उनके बाद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, और बहुत सारे जो अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। अगर आज भी हम उन चीज़ों, यानी कि किसी की कोई चीज रह जाती थी, वो बाद में भी आए ना, तो कोई उस चीज को कब्जा नहीं कर लेता था बिला वजह। आज तो जगह जगह जो है वो कब्जा करने की बात होती, छोटी सी चीज किसी की होगी तो मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, मतलब अपनी तो ले ली है, थोड़ी सी वो ना दीवार भी आगे निकाल लेते हैं कि ये थोड़ा सा और निकले, मैं भी उसके ऊपर कब्जा कर लूं। तो ये इस्लामी सोसाइटी में नहीं होता। ये अच्छी, जो भी अच्छी बात आप करेंगे वो आपको इस्लाम के अंदर ही मिलेगी, इस्लाम के दावन में आपको मिलेगी।
द रीजन आई वाज मेंशनिंग दीज थिंग्स शाह साहब वाज टू एग्जैक्टली ओपन अप दिस टॉपिक अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज़ what you might find is that, you know, living especially in today's day and age, and especially in the Western societies, that because people are so far away from this knowledge about the times of the Islamic era and Islamic societies, what a lot of the stuff that we shouldn't be doing as Muslims has become normal, unfortunately. And for people to move away from those things might be difficult for them, and they consider it as ye bhi chalega, wo bhi chalega, this is too extreme, wo, this is for example the religious people, the Maulvis, and you know, this is how we, for example, let's open it up a little bit more now. Let's talk about earning. So people earning haram ways, people might be buying and selling alcohol, people might be not untruthful to the taxman, people might be doing all sorts of things that Islam hasn't given them ijazah to regarding interest and those sort of things. And when you explore these topics, and we've talked about them in the past, people think this is too extreme. This isn't, you know, in today's day and age, we can't do these sort of things. Sada chal daini. How are we supposed to live like this? We have to do these things, otherwise we're not going to earn enough. So it's about trying to understand, look, it's okay to say we want an Islamic society, but we need to really open it up and look at ourselves on each aspect. Employment is just one area. Education, barda, all of these things. Islam has, like you said, taught us everything in Quran, Sunnah, and we've got those examples there. But we're going to have to, if we want to change, we're really going to have to do something and open up every single chapter of our life and our way of living.
MashaAllah, both खोल रहे हैं, तो कहूँगा इसमें दीन इस्लाम में ना इस्लामी ईमानियात भी हैं, इबादात भी हैं, मुआमलात भी हैं, आपके उठने से लेकर सोने तक हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन है, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, हाउ टू क्या कहते हैं, लाई डाउन, किसी कोई आ रहा है तो मदद की, यानी सारी चीज़ें आपको इस्लाम के अंदर मिलेगी। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो इस्लामी सोसाइटी आएगी ना। अगर आप सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, अपने इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, मैं वो भी देख लूँ, उस करने से पहले ये तो देख लें कि इस्लाम ने बताया ही नहीं बताया। जो इस्लाम ने बताया है उसको आग बंद करके हक और सच बस उसको आप करते जाएँ, फिर देखें इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह कैसी इस्लामी सोसाइटी बनती।
डेफिनेटली शाह साहब, हियर वेरी ब्यूटीफुली लाइक रिजवान भाई इज एक्सप्लेनिंग दैट वी नीड टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ एवरीथिंग। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इस्लामिक सोसाइटी इज, वी विल हैव टू लिटरली ओपन अप एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड बिकॉज वी नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद दिस ब्यूटीफुल रिलीजन ऑफ इस्लाम, एंड द ब्यूटीफुल रिलीजन ऑफ इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। Alhamdulillah, the Prophet sallallahu ta'ala was sent as an example for us. And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he lived his life in a way that is an example for everyone up until the day of judgment, that whenever we are in facing any sort of scenario in our life, we can refer back to the seerah of the Prophet sallallahu ta'ala wa sallam. And may we all be sacrificed upon the blessed companions of the Prophet sallallahu ta'ala wa sallam. How beautifully they explain to us and pass down the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. No one in the entire history of mankind, his biography has been documented like the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And this is, alhamdulillah, the great favor of the companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam upon us, the coming generations of the ummah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that we have so many accounts about the blessed life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that we can see how did the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam deal with a certain scenario. And alhamdulillah, so many examples have been given previously in our silsilas as well on this regard. Another thing I would just like to add, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned in the glorious Quran, to enter into Islam completely. This is a big problem a lot of times with ourselves. If sometimes we take what we like from the religion, we pick and choose from amongst the religion. Selective. That this suits my nature, I will accept that. This one doesn't suit me so much, so leave that to a side, and I will accept another thing. Ma'azallah, this shouldn't be the case. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, enter into Islam completely. So we need to enter into Islam completely, inshallah ta'ala. Take all of the ahkamat of the sharia on board, inshallah. Whether our nafs, our desires like it or don't like it, the whole aspect of being a Muslim, of iman, is to submit yourself in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the entire concept of Islam and iman, that we submit ourselves for the sake of Allah, Allah azza wa jal. And when we are able to submit ourselves for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that is when we will get this Islamic society, this ideal society that we need in our thingy. And the points that Rizwan Bhai was mentioning, when Rizwan Bhai was mentioning these points, one thing that was coming into my mind, this is why it is so important we need an Islamic society. For these nazriyat that Rizwan Bhai was mentioning, these ideologies and these mindsets that people are facing out there in this day and age. So we can get rid of these ill thinking about Islam. This is why it is so important we establish an Islamic society in our own homes, so that our upcoming generation, they are protected from such thoughts as well, inshallah ta'ala.
MashaAllah. Arun bhai bhi humare saath hai, aur waqai jaise Rizwan bhai aur aap farma rahe hain, wo ek jumla ho gaya, koi nahi, chalta hai na, wo chal de, Islam yehi to baat hai na, Islam har maamle mein guide, koi kisi ko choda hi nahi hai na Islam ne. Hamara problem yehi hai ki humne padha nahi hai, har aap kehte hain na ki agar aapko kamyab zindagi guzarna hai, तो आपको वही रूल लेने, सब नहीं चलता. बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब का हुक्म चलता है. हम सब चीज नहीं चलती. अच्छा ये भी कर लूं और ये भी कर लूं, अच्छा इसको छोड़ दूं, अपनी मर्जी से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है. इस्लाम में पूरे दाखिल होना है और शैतान की पैरवी नहीं करनी है. अब वो यही होता है कि दोस्ती भी लगाई हुई उसके साथ, अच्छा ये भी कर देता हूँ, ये भी कर ले रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहे होंगे और धोखा भी दे रहे होंगे, हज पे भी हर साल जा रहे होंगे और हराम के माल से जा रहे होंगे. तो ऐसा नहीं, हराम से बचना है, हज भी करना है, रोजे भी रखने हैं, लेकिन तकवा भी इख्तियार करना है, नमाज भी पढ़नी है लेकिन दूसरों को ईजा नहीं देनी है. ये सारी चीजें मामलात लेकर चल रहे हैं और हमारा ये इस्लाम सारी चीजों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में गाइडलाइन देता है. विदाउट नॉलेज हाउ डू यू नो इज इस्लामिक सोसाइटी और ये किस तरीके से होगा. ये नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि इस्लामिक सोसाइटी क्या होती है. तो बेसिक चीज़ वो इल्म हासिल करना है. इल्म बहुत ज़रूरी है, यकीन करें. इल्म है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है. वो फिर जो है वो गुनाह को भी नेकी समझ के माशाल्लाह कर रहा होता है. कोई इल्म नहीं है ना, तो जहालत जो है ना, ये बहुत बड़े फितनों के दरवाजे खोल देता है, बर्बाद कर देता है इंसान. जहालत ही होती है जो हसद में मुब्तला करती है, बदगुमानियों में करती है, और बंदा जहालत की वजह से कुफर में जा गिर जाता है. उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ ईमान को बर्बाद कर देगी. तो इल्म होना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह. तो इल्म हासिल करते हैं और दावत इस्लामी ने मैनी वेज, ऑनलाइन सिस्टम है, फेस टू फेस सिस्टम है, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, जामतुल मदीना के अंदर, वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट मीन्स टू लर्न नॉलेज इन योर ओन टाइम. throughout 24 hours. आप जब चाहते हैं सीखना दावत इस्लामी आपको प्रोवाइड करता है. ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे दावत इस्लामी की, जिस वक्त आप पढ़ना चाहेंगे 24 आवर में, जिस टाइम पे आप रात के 2 o'clock बोलेंगे या 1 o'clock बोलेंगे या इवनिंग में बोलेंगे, आफ्टरनून में दावत इस्लामी का एक सिस्टम ऐसा मौजूद है कि वो आपको उस वक्त पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल कर देगी. कोशिश करें कि इल्म दीन सीखने की तरफ आए.
We see that many people, you know, they'll probably go and pray, you know, readily 4 times a day, maybe 5 times a day. But as Rizwan Bhai mentioned, that when they're earning, their earnings is the halal or not. The Prophet says that to ponder on the matter of your hereafter for a moment is better than 60 years of worship. Do we ponder upon our hereafter, what our actions like? Are we, you know, thinking that my earnings, what I'm doing, is it legitimate or not? What I'm feeding my family, my children, what are the consequences of that? Because if my earnings are not halal, I'm feeding that to my children, which is going to have an adverse effect on them. Because they are being fed, which is money which is earned illegitimately. And that effect is going to be in a different aspect altogether. And we need to take accountability of our own actions as well. We need to start, you know, doing our actions in such a way that when we leave this world, you know, we leave this world with iman. And then we are safe from, you know, any torment of the grave and thereafter as well. But when we look at many people who have left this world, you know, they probably worked so hard, earned wealth, earned reputation. What have they taken with them? You know, their families, what have they taught their families? If, you know, if they were, alhamdulillah, you know, practicing Muslim, they, you know, had their families reading Quran, namaz on a daily basis, that you'll call is good family, good society. But if they haven't given time to their families to, you know, seek deen or send their children to the madrasas, alhamdulillah, Dawud Islam is catering for every age, whether a person, a child is 6 year old, starting out, whether the person is 60, 70 year old. Dawud Islam is catering for all ages in every aspect. As you mentioned, 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. And I will give a complex example myself. I'm studying at 11:30 at night.
Mashallah.
You know, I want to seek knowledge. I'm studying 11:30 at night because that is suitable time for me. Some brothers may be, you know, available at 1 o'clock in the morning. Dawud Islam is an open door for everybody. So, you know, there's no restriction that you're too old or too young. Everyone can come and, you know, learn at any age. We need to do this and teach our children as well. That's going to make an ideal society for us.
MashaAllah. Dear Rizwan Bhai, inshallah, we'll take few Madani pool from Rizwan Bhai and then inshallah, we'll move off to another segment, inshallah.
I'll carry on from this topic that we're talking about, knowledge, because it is so, so, so important. And when Harun Bhai was mentioning about not being able to recognize a Muslim from a non-Muslim, you know, it really did hit home that, you know, there's a lot of people out there that are actually proud of this fact, that they consider themselves quite modern and quite sophisticated because they are, you know, mixing within those circles with the non-Muslims and, you know, sitting and eating with them, and, you know, they're at this level. And it's really, if this isn't down to ignorance, I don't know what is. And it's, they don't want to learn. They don't want to better themselves in this field. In others, yes. So they want to better themselves in terms of their class, in terms of their education, in terms of their earnings. And that, but it's trying to reach out to these people to say, look, this is important. This is the path to success, the key to success. You need to learn. Otherwise, you're at a very big risk of ruining your own life. And by not looking into what an Islamic society, your home needs to be, your community needs to be, your family needs to be, you're potentially ruining the lives of your future generations as well. So this thirst for knowledge is very, very important. And there is so many avenues. We need to make sure that we're choosing the right ones. Like we mentioned about the courses, etc. There is a lot of... When people do turn to knowledge, we need to make sure that we're getting our knowledge from the right sources, and we're not just going and getting the first thing that we pick off the internet and it's not a trusted source. We need to make sure it's an authentic source and we're getting our religion from authentic scholars that are teaching us the right Islam, the true Islam, inshallah. So that's just something that I wanted to touch on, that make sure that the knowledge that we're getting is authentic, inshallah.
Pichle dino madini mudakare mein bhi Ameer Ahle Sunnat se ye aaya na ke ji jo net ke upar hoti hai to Ameer Ahle Sunnat jo sach hai जो ठीक होगी उसी को लेंगे ना, तो इसको भी तो उसी को पता होगा कि ये ठीक है सच है, वो पता ही नहीं, वो हर चीज ले लेगा तो आजमाइश होगी। तब वो जिसको पता है मुझे बुखार है, वो बुखार की दवाई, उसको बुखार की लेनी है, वो ले ले आप पाँव के दर्द की दवाई, तो फिर क्या होगा, लगानी पाँव के ऊपर थी, वो हाथ पे लगा रहा होगा, तो ये भी तो देखा जाएगा ना। तो इसीलिए आइडियल ये है कि उलमा की सोहबत में वक्त गुजारे, सिट विद द स्कॉलर्स, स्पेंड सम टाइम विद द स्कॉलर, एक तो उनकी बरकत मिल रही होगी इंशाल्लाह, दूसरा इल्म हासिल हो रहा होगा। आप देखेंगे अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से तकवा परहेजगारी हासिल होती है। एक पैकेज है, आइए उसको भी देखते हैं।
It's the Islamic, it's a right to rectify the people, it's all over the world, it's the Islamic.
सफर बड़े मुश्किल होते हैं और हर का सफर वैसे ही मुश्किल है, जा रहे हैं और यूके वगैरह के सफर होते हैं बड़े कंफर्टेबल, यहाँ धूप मट्टी रेगिस्तान, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन वाकई इनकी ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो जो मेरे साईं भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे यही इल्तिजा करूँगा कि इन लोगों के बारे में भी सोचें और इनकी भी मदद करें, इनको जो बेसिक इनके नेसेसिटीज़ नहीं है इनके पास, पानी खाना वगैरह, मस्जिद मदरसे जामिया, उनके लिए ताउन करें, हमारे साथ बहुत डेस्परेट हैं ये लोग, खाने के लिए पानी के लिए, पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, कई मील इनको चलना पड़ता है पानी लेने के लिए लाने के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला दावत इस्लामी की FGRF सर्विस का भला करे, अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह दराजी में खैर अता फरमाए कि सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प कुएँ जो है वो लग चुके हैं समर पम्प और मजीद भी हमें लगाने हैं।
It's spreading the fragrance of the love of the prophet.
इस वक्त जो हालत है वो यूके यूरोप में महीने का सफर करने के बावजूद भी नहीं होती जो यहाँ पर एक दिन के सफर करने से होती है। बहरहाल वाकई मुश्किल सफर, और यहाँ के आस्थाने रसूल जो है अल्लाह उनको जजाए खैर दे, बरकत दे, जो कोशिश कर रहे हैं हैंडपम्प मस्जिदें बनाने की।
We love Dawat Islami. We love Dawat Islami.
जगह जगह जाते हैं लेकिन मोहब्बत प्यार ये खुलूस जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। सादा लोग, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस, अल्लाह इनको जदाए खैर दे। और माशाल्लाह भी इंतजाम कर रहे हैं खाने का, थर के इधर हैं, पूरे दिन से निकले हुए थे, जगह जगह मस्जिदें जहाँ बन रही दावत इस्लामी की और कुएँ वेलफेयर का जो काम है, इस शहर इस इलाके में भी गांव में भी एक मस्जिद बनने जा रही है दावत इस्लामी की। कौन सी है
ये गांव? रणपारियो है, जहाँ पर सोलर पैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पर लगाने का सिलसिला हुआ है। इससे करीब में एक इलाका है हीरा, वहाँ पर इंशाल्लाह फैज़ान मदीना बनेगा अल्लाह की रहमत से, वहाँ इंशाल्लाह हम जामतुल मदीना भी बनाने जाएंगे।
स्टोक के अंदर हमारे एक इस्लामी भाई हैं, उनकी वालदा और उनके घर वालों ने राजा गुलफराज खान भाई की अल्लाह मगफिरत फरमाए, तो उनके वालदा ने उनके घर वालों ने उनके लिए एक मस्जिद, एक कुआं और दो हैंडपम्प जो है उसकी तरकीब की है। अल्लाह की मगफिरत फरमाए, पूरे ख़ानदान को मिला इस आवर का बख्श थे। माशाल्लाह थर में है और इन्होंने हमारे खाने का इंतज़ाम किया है, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। आज इंशाल्लाह थर के आशिकाने रसूल का भी जो खाना बनाया है, किस तरह होता है, क्या होता है, आज खाते हैं। ये
Bless you in the world, O Dawat Islami, your fame be widespread.
Thar Allah Allah, ek Madine ka safar, Allahu Akbar. अल्लाह करे के मदीने की बाद अब हाजिरी मिल जाए। थर के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, इस डेस्परेटली नीड donations, not for only Thar, but different parts of the world. Dawat Islami ki FGRF service jo hai, welfare ki kaam kar rahi hai. Aayye milkar inka saath dete hain. Duniya bhar mein, jahan jahan zarurat hai, Dawat Islami koshish kar rahi hai. Aap taawun karenge, inshallah, apne kaam ko badhayenge, khana khilate hain, welfare ki activities hain, masajid hain, madaris, Jamiatul Madina, aur bahut sare kaam Dawat Islami kar rahi hai. Allah humko inke saath taawun karne ki taufeeq ata farmaye. Ji Taqeer bhai. Inshallah kuch kalam bhi sunenge thodi der mein.
The next point that I would like to move on to for an Islamic society, very important. And when we look at the glorious Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala is talking about this ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, one of the qualities that is mentioned is this next point. And that is that we call and towards righteousness and forbid evil. Once this aspect of the quality of this ummah is common in our society again, inshallah, our societies will start becoming an Islamic society once again, inshallah. Unfortunately, it seems as though that we are doing the opposite. Rather than calling towards righteousness and forbidding evil, it seems that we forbid the righteous and we call towards evil. Ma'adallah. May Allah protect us from this.
Ameen.
And this is something that is very important in our society. That if each and every one of us takes it upon ourselves that we need to call towards righteousness and forbid evil, inshallah ta'ala, many, many evils that are in our society, they will start going away. And inshallah, everyone will start coming towards righteousness, and that will lead towards a ideal and Islamic society as well, inshallah ta'ala.
Regarding this, just wanted to add on. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was sitting on the Bayt al-Mimbar Sharif, and a Sahabi asked, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the best person amongst people? The best person." And he sallallahu alaihi wasallam, he replied that the best person amongst people is the one who recites the Holy Quran in abundance, adopts more piety, calls people towards righteousness, and prevents them from evils the most, and treats his relatives with kindness and the most. So we've got 4 or 5 qualities or traits here. But the one, like Taqeeba was mentioning, is calling towards righteousness. Unfortunately, nowadays, you know, people even make an Islamic occasion an excuse for sins. MashaAllah. For example, the night before Eid is supposed to be a night in which people are involved praying, offering nawafil, doing good deeds. But what do we find? People are going outside, you know, they're doing all sorts of wrong. Music is being played, and, you know, you guys know better what happened. So unfortunately, this is a trait that we are missing very, very much so from all parts of Islamic societies.
Sari cheezon mein dekhna padega iske, mashallah.
Shah sahab, Qudr bhai ne patwari bola, patwari nikal gaya.
Patwari bolo ji sarkar.
Taqeeb ji ke islami maashre wasa
ji
bahut zaruri gal hai ke asa apne waldein naal, pehne paravan naal, baaki ne buzurg jehde unna kisra se peshe chune ya. اگر اسا اپنے والدین کی عزت اگر نہ کرنے سن والدین جلا اسا نکے سا ان اسا کی پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا اسا جو مقام پر والدین نے دعا نال ان کرن ہمت کیتی اگر جس تھوڑا پڑھی گئے ہاں تے اسا او نہ سوچنے کہ سارے والدین سارے کیا کوئی مشکلاں کیتیاں اسا کی جواب جانے واسطے تھوڑا جا سارے کول علم ہو گیا تے اسا سمجھا اسا سارا کچھ جیاں والدین کی اج کل پوچھنے کون محمد اور جس کو تھوڑی علم ہو جانا نا دنیاوی علم اس میں میں ہی ہاں تو باقی نے پرانے زمانے کی سوچ ہے انہوں نے تو میں بہتر جاننے ہاں اس نے سوچنا کہ سارے والدین جڑے یا بزرگ جڑے انہوں نے زندگی گزاری سر تو کئی بڑے انہوں کو تجربہ بھی زیادہ آ جو جی انہوں نے وجہ تو اس پر تو اسا انہوں نے عزت کرنی چاہیے انہوں کی اساں دیکھ بھال کرنی چاہیے اگر اسا نہ کر سا تو سارے اگو بچے جڑے نا وہ کس طرح پیش سن سارے نال اگر تکے جائے کہ اسا والدین کریم تھوڑی عزت کرنے ہاں یا نہ کرنے سارے اگلی نسل جڑی ہے نا وہ اپنے دادکیاں نانکیاں کی بالکل نہیں پوچھنے دادکے نانکے اگر گل کرن کتن وہ اگنور کری جانے جی کو نہیں ہار ہے بڈے کو نہیں جانے میں جو کہ میں یہ کرنا ہاں یہ نہیں سوچنا کہ والدین اِن جو کیتا اِن مکی پالیا پوسا دادکاں جب پیار جڑا دادکے نانکے دینے نا او اس قسم ہونا کہ بچے سمجھنے کہ او سمجھنے کہ نہیں ہے ساڑے نال سختی کرنے لیکن کیوں نہ تجربہ ہونا سارا کچھ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਰਖਾ ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦਿਆੜ ਕਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁਰਖਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਤੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇਨ ਕੀ ਔਰ ਪੀਪਲ ਹੋਮ ਭੇਜੀ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਵਾਲਦੇਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਲਦੇਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦੇਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਠਾਓ ਸੀ।
ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਾਮ ਫੁੱਟਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਤੇਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਯੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਯੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਅਦਬ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮੁਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾ ਅਦਬ, ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮੁਸ ਸਲਾਮ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੇ ਅਦਬ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਔਰਾਕ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਤ, ਇਸਲਾਮ ਉਸਕੀ ਵੀ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ। ਔਲੀਆ ਕਾ ਅਦਬ ਕੈਸੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਅਦਬ ਕੈਸੇ, ਦੀਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਬ ਹੀ ਅਦਬ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਕਿ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਨਸੀਬ, ਬੇ ਅਦਬ ਬਦ ਨਸੀਬ। ਸ਼ੈਦਾਨ ਜੋ ਮਰਦੂਦ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ ਤੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖੇ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਰੂਜ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਛੋਟੋ ਕੀ ਤੋ ਕਿਆ ਬੜੋ ਕੀ। ਅਦਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਮਾਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਬ ਵੋ ਬਾਤ ਕੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਇਨਕੋ ਹਾਂ ਚੁਪ, ਆਜ ਤੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਟਾਂਗੇ ਫੈਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹੋਤੇ। ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਕੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਭੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ, ਉਨਕੇ ਜੋ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਥੇ, ਜੋ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਜਿਨਸੇ ਇਲਮ ਸੀਖਾ, ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਤੇ ਥੇ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੋ ਆਜ ਤੋ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਫੈਸਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇ ਅਦਬ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ
ਜੀ, ਐਂਡ ਟੂ ਫੋਰਮ ਐਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਫਰੋਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਗੇਨ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ, to give them the respect as well, but to gain all the knowledge and the wisdom they have. They've got so many experiences and so many lessons for us that we can learn from. Attach ourselves, sit with the pious people, attach yourselves to the ulama, the scholars, the imam sahiban, and even with their company you'll learn so much. This is all part of an Islamic society that we can't think that we know it all. We know everything, we don't need to learn. The Islamic society, we're thinking too big, maybe, perhaps, that, you know, how we're going to change the world, how we're going to change our country, how we're going to change our society, our community, our neighborhood. If we focus on our household, how Islamic is our household? Yeah. Behind those closed doors, and I'm talking about those people that are perhaps appear Islamic on the apparent outside as well, when they step outside their house and they go into the mosques and you know, they've got the Islamic dress on, etc. Behind those closed doors, what are you like? How are you dealing with your
family?
What's on your television? How are you sitting when you're eating? Are you dealing with your children in the right way? Are you teaching them what they need to be taught? Rather than just complaining when things go wrong, what are you doing to give them the right society, the right teachings, to make sure that they're part of an Islamic society? And we, you know, like you said at the start, Islam teaches us about every single aspect. But how much do we care about implementing that? See. Are we sitting according to Sunnah when we're eating? Are we eating according to Sunnah when we come into the house? Are we teaching our children the du'as? When we're going out, are we teaching them the du'as? When we're going up the stairs, are we teaching them the du'as? And all of these things, I mean, when it comes to even the haircuts of our children, how are we, what lines and designs are we putting in the hair? What clothes are we buying them?
Allah.
You know, all of these things, what food are we putting in front of them? We need to think about every single thing. When it's the time for namaz, are we... You know, if the massage is close to you, are you taking your children with them if they're of that age? If not, are you telling them to read at home with you? Are you calling the azan in your houses? What stories are you reading to your children? I don't mean to go on and on, but there's so much to do that you can put on in every aspect of your children and your family's life. Small, small things that won't take much effort. We do a lot of these things anyway, but doing it in an Islamic way, just thinking about it a little bit, what effect will this have? Because the children, what you're doing to them at that age, they remember. These things, subconsciously, they'll remember, they'll act upon it for the rest of their lives. They'll carry it on with their children. They'll carry it on with their friends, their neighbors, at school. It has a big role on effect. So how you're talking to them, how you're treating them, how you're teaching them will have a massive effect on how they're being with other people, what they're growing into.
असल में बात ये होती है ना कि if you want to check yourself who you are, then check yourself how you are when you are alone. लोगों के सामने तो बड़े नेक हैं बड़े असल में who you are check करने के लिए how am I when we are alone in our own home in our own room जहाँ कोई भी नहीं देख रहा कुछ नहीं कर रहा उस वक्त जो आप है ना तो वही आप है ये अपनी पहचान देख लें फिर इस्लामी सोसाइटी क्या है इस्लाम मेरे अंदर है नहीं है नजर आ रहा है नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ आपको खुद ही पता चल जाएगा फर्ज से माशरा बनता है माशरे पे तनकीद करने के बजाय अपने को देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ यही बंदा मस्जिद में आता है माशरा अच्छा हो रहा है और यही उठकर अगर किसी गुना की जगह पर जा रहा है जहाँ पे ड्रग्स हो रहे हैं अल्कोहल बिक रही है मार धाड़ हो रही है गालियां बके जा रही तो ये उधर के माशरे उधर के माहौल को खराब कर रहा है वो कहते हैं निगरानी शुरू ना कि माहौल की कोई आंख नाक कान नहीं है कोई जिस्म नहीं है कोई बॉडी नहीं है आप ही मिलकर माशरा बनाते हो जैसे तौकीर भाई ने शुरू में बयान किया आप अच्छे हो माशरा अच्छा हो गया और आप अगर बुरे होता जिसने गुना करना है यकीन जिसने गुना करना है तो वो माशाल्लाह मक्के मदीने में भी गुना कर लेता है और जिसने बचना होगा वो यूके के अंदर हो अमेरिका के अंदर हो वो वहां बच जाएगा जिसको बचने की कोशिश करनी होगी पता है गुनाहों की यलगार है पता है कि इतना कुछ है जिसको बचना होगा वो बचने की कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा अब जो कहता है कि बचाना ही नहीं है ना बचना है तो फिर तो वो गिरफ्तार तो होगा ना उस गुनाह के अंदर और फिर वो किसी और को ब्लेम दे तो ये ठीक नहीं है मैं अकेले में कैसा हूं ये बहुत गौर करने की हाजत है बहरहाल टाइम है सेगमेंट का साइन लैंग्वेज आप भी रेडी होंगे इंशाल्लाह हम भी रेडी हैं इस वक्त लेट्स सी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हमारे फेवरेट शाहिद भाई से और शाहिद भाई का देखते हैं कौन तौकीर भाई जाएंगे हारून भाई सारे शाहिद भाई के बनने को तैयार होते हैं चले शाहिद भाई इंशाल्लाह
जी सर इंशाल्लाह
ठीक है इंशाल्लाह चलो
I'm doing the ishara
शाहिद भाई इशारा करेंगे
अच्छा
सर शाहिद भाई बैठे हैं तो फिर शाहिद भाई इशारा ठीक है चले शाहिद भाई बिल्कुल मुस्कुराया इसका मतलब है इजी है शाहिद भाई
Going 7 1 week next week 7 days Sunday Monday no eating fasting on Monday sunnah
kya baat hai ji mashaallah sallu ala al habib sallallahu taala ala muhammad sallallahu kya baat hai ji shahid bhai ne well done shahid bhai kamal kiya aapne tusi great fir inshaallah let's see now with arun bhai se thoda sa cross ho jaye different ho jaye arun bhai your time for do ishare inshaallah to rizwan bhai inshaallah जी
फ्राइडे फ्राइडे
क्या बात है जी डायरेक्ट फ्राइडे पे पहुंच गए
अप्लाइंग इतर ऑन फ्राइडे सुन्नाज ऑन फ्राइडे
माशाल्लाह
सुन्नाज ऑफ फ्राइडे
सुन्नाज डे ऑफ फ्राइडे क्या बात है जी लगता है इजी हालांकि हमारे हिसाब से मुश्किल थे लेकिन क्या बात है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे भी हम सीखते जा रहे हैं आप भी सीख रहे हैं हम भी सीख रहे हैं अब आते हैं तौकीर भाई की बारी है और शाहिद भाई बिल्कुल रेडी हैं ठीक है शाहिद भाई ठीक है जी तौकीर भाई तो वैसे मायर हैं इंशाल्लाह
washing.
कहाँ पहुँच गए?
दुआ.
क्या बात है जी मदीन, लगता है चौथा नहीं करना चाहिए, तीन ही करने चाहिए आज. शायद शायद भाई ने इंटरेस्टिंग कर दिया है सबको. क्या बात है शायद भाई.
डू दैट अगेन.
अच्छा दोबारा, वो दोबारा करेंगे अभी. यानी मेरे से रिलेटेड कोई चीज है.
स्टार्टिंग टॉकिंग आस्किंग अदर्स वेल बीइंग ऑफ अदर्स आस्किंग अबाउट अदर्स doing dua asking to the dua. Is reading something, is doing dua.
Yeah. Ji shayad bhai guess karte hai.
Being humble. Doing dua before eating, doing dua before drinking, reading. No.
चले जी, शाहिद भाई क्या करते हैं आप, कहाँ
कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं दुआ.
चले जी, वो ऐसे कर रहे हैं तो दुआ हो गया. आप देखते हैं आगे जी क्या दुआ दुआ कहाँ पहुंचा रहे हैं. अच्छी बात है दुआ करना, अच्छी बात है.
Forget that. Respect.
अच्छा, कभी झुकते हैं कभी कुछ करते हैं, शाहिद भाई को कंफ्यूज करते हैं. टाइम जो है वो काफी खत्म हो गया है, ओवर हो गया है. एक एक ट्राई और दे देते हैं इनको इंशाल्लाह दोनों को. इशारा करें ना थोड़े से, सारे इशारे भी खत्म हो गए आज तौकीर भाई के पास.
अल्लाह अकबर. तौकीर भाई
जी नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं. रिजवान रिजवान भाई करते. रिजवान भाई क्या, रिजवान भाई ने तो देख लिया था. चले जी चले बता दे जी क्या था.
बीइंग ग्रेटफुल.
चले शाहिद भाई दुआ समझ रहे थे और बात हो गई. चले सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. चले जी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक हमारा रह गया था कार्ड तो वो मिल गया. अब इंशाल्लाह अब इशारा करेंगे हमारे रिजवान भाई. ठीक है जी इंशाल्लाह. रेडी.
Nek Amal, Shajra Sharif, Reading Shajra Sharif.
Reading Shajra Sharif, bada easy tha ji. Bada aaram se jeb se nikala, mashallah. Isko jeb mein rakhna chahiye, iski barkat hoti hai Shajra Sharif ki. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah kuch calls bhi lete hain.
My name is Muhammad Abdullah Attari. I am calling from Luton, UK. Babu John, can I please request the knock on to read this knock? Mujh pe bhi chashme karam ae mere aqa karna. Mujh pe bhi chashme karam. Please can you make dua for me and my family? Jazakallahu khaira.
Ameen, ameen, Allahumma ameen. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bada pyara madani munna hai hamara, mashallah. Luton se ki hai farmaish, to bilkul inshallah karte hain. Kafi time ho gaya, lekin hamare paas ek package hai bachchon ke liye. Bade bhi dekh sakte hain, seekhne ka usme sab kuch hota hai. Aaiye dekhte hain inshallah, uske baad fir aapko kalam sunwayenge inshallah.
Kaniz Fatima, achi achi. Kaniz Fatima, achi.
Allahumma inni as'aluka khair al-mawlaji wa khair al-makhraj. Raika, ye kya kiya aapne?
Darwaza to band kiya hai aur kya?
Itni zor se?
Wo
वो जल्दी में मेरा हाथ दरवाजा छूट गया।
इस तरह जल्दी में तो दरवाजा खराब हो सकता है ना। जल्दी में तो कोई भी चीज बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दरवाजा हो या दराज, कबर्ड हो या कैबिनेट।
ओहो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी।
कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है।
वाह भाई,
अच्छी बातें सिखाती है।
वाह,
छोटी मुंह से बात बड़ी ये अक्सर हो जाती है।
हैं,
कितनी अच्छी बच्ची है,
बहुत अच्छी
बात
है।
में ये सच्ची है,
कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है।
ये क्या कर रही है आप?
पानी पी रही हूँ।
खड़े होकर?
तो क्या हुआ?
पानी बैठकर पीना चाहिए।
लेकिन क्यों?
क्योंकि बैठकर पानी पीना सुन्नत है।
अच्छा।
और हाँ रायका, जब भी पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशनी में देखकर 3 सांस में पिए।
रोशनी में क्यों? अंधेरे में भी तो पानी पिया जा सकता है।
अंधेरे में ही पानी पी लिया और अगर ग्लास में कुछ कचरा वगैरह हुआ तो वो भी पेट में चले जाएगा, जिससे आप बीमार भी हो सकती हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ये रूम की आपने क्या हालत की हुई है? ना बैग अपनी जगह पर है, ना शूज, और आपने अब तक कपड़े भी चेंज नहीं किए।
जी वो बस भूख लग रही थी तो जल्दी में किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा, बस अभी 2 मिनट में कर देती हूँ।
अरे अरे देख कर,
जोर से लग गई।
देखा रायका, आपको अपना रूम साफ ना करने और जल्दबाजी करने की वजह से खुद ही तकलीफ हुई ना।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगी।
चले जोहर की नमाज का टाइम भी हो गया है, अब नमाज पढ़ लेते हैं।
जी ठीक है।
उफ, ये रायका भी ना हर वक्त जल्दी में रहती है। रायका क्या हो गया है आपको? हर काम इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पहले आपने जल्दी में दरवाजा बंद किया, फिर खाने की जल्दी में रूम समेटे बगैर आप लंच खाने बैठ गईं, फिर जल्दी में ही आप खड़े खड़े पानी पीने लगी, और अभी आपने ठीक से नल भी बंद नहीं किया। और अब ये देखें, देखो रायका, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होते, बल्कि कोई ना कोई गलती हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, हमें हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मोमिन सोच समझ कर इत्मीनान और संजीदगी से काम करने वाला होता है।
जी आपी, मैं आइंदा जल्दबाजी नहीं करूँगी इंशाअल्लाह।
चले अब नमाज पढ़ लें, और हाँ सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है।
जज़ाकल्लाहु खैरा, मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी।
कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा।
माशाल्लाह तौकीर भाई, कितने सारे मदनी फूल जैसे ना स्मॉल क्लिप।
Definitely, very beautiful. It's a very common problem in our day and age. A lot of times we are in a rush and doing everything. And what we need to do is just step back for a moment, be very calm in all of our matters. And inshallah, we will be saved from many problems in our matters. A lot of times, because we are rushing everything, then what happens is because of our rushing, we fall into many problems. But inshallah, if we take a step back, be calm, in all of our matters, inshallah, many issues that are about to occur, they won't occur due to being calm. Many a time, if we just take into account is when we are driving. Sometimes we are rushing so much that we don't take care about other pedestrians, other cars on the road, even the signals on the lights and stuff like that. And we just want to get there because we're running late. But if we left that few minutes earlier from our house, to get to our destination on a particular time, then inshallah ta'ala we would have saved ourselves from many difficulties and problems as well.
Chale, mashallah, inshallah, kuch kalam sunte
inshallah.
Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Balaghallu la bi kamalihi kashafa. Me
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وكمال حسن حضور ہے کی گمان ننگ سے جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نا بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نا بس ایک جان دو جہاں فدا جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ آخری وقت میں کیا اب تو بس ایک دھن ہو ہماری اب تو بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دھن ہو اس نے بھی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک دھن ہو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاٹا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں اڈ کے میں کیویں آواں نال سے کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس
اللہ کیا بات ہے. چلے انشاءاللہ ٹاپک کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. پہلے توقیر ہوئے کہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں.
جی الحمدللہ ڈسکسڈ مینی ایشوز ٹوڈے ہاؤ ٹو میک آور سوسائٹی اینڈ اسلامک سوسائٹی اینڈ وین وی میک آور سوسائٹی اینڈ اسلامک سوسائٹی ول بیکم این آئیڈیل سوسائٹی ایز ویل ان دا ون امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر آئی ول لائک ٹو مینشن از دا مینی اے ٹائم ایز این انڈیویجول ایز بلیورز واٹ وی تھنک از that we need to do this good deed, we need to do that good deed. We have a list of all of good actions that we need to do. But like you touched upon earlier, that we be reading Salah, but at the same time, we're still involved in so many haram activities as well. If we focus on this part as well, that all of those things that are under the disobediences of Allah subhanahu wa ta'ala, if we refrain from them, inshallah ta'ala, this will be, take us a long way as well. Drinking of alcohol, drugs and stuff like this, obviously, there are those things that are inside our heart, the hidden diseases of the heart, such like how Shahid Bhai touched upon earlier, pride and arrogance. That I know everything now. That these things are the diseases of the heart, and this is something that can destroy an individual as well. In the Islamic terminology, they are known as the muhalikat, those things that destroy an individual. So these such diseases, we need to focus upon them as well. And there's a very beautiful booklet of Maktabatul Madina, Batni Bimariyon Ke Malumat. If the brothers of Madrin Channel, inshallah, the viewers of Madrin Channel, they can obtain this book, inshallah, ta'ala, from Maktabatul Madina and also download it from Dawat-e-Islam's website as well, inshallah, ta'ala. Read through these. There are going to be so many of these diseases that are mentioned in this book that maybe we have never even heard of in our life. But they are a disease that is hidden inside us and we don't even know. So this is something that we need to focus on as well, inshallah ta'ala. Learn what this hidden disease is and then learn what are the causes of it, or what are the remedies for it as well, inshallah ta'ala. All of this comes hand in hand with what we were talking about earlier, the importance of knowledge. So inshallah, the more we learn about the particular topic, the more we will be able to save ourselves as well.
Islamic society ke liye to bada zaruri hai ye ilm hasil karna, aur isme se jo farais ulum mein se bahut sari cheeze hain. اسی کہتے ہیں انسٹیڈ آف فائنڈنگ فالٹس ان ادر مسلم بردر بیٹر فائنڈ گڈ تھنگس ان دیم ٹو میک یور لائف اسموتھلی. ورنہ ہوتا یہ کہ وہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ پریشانی میں لگے ہوئے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے, پھر حسد کی بیماری پکڑ جاتی ہے تو بھائی وہ خامہ خی جل رہا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے, وہ آگے کیسے چلا گیا, اس کو کیا ہو گیا, اس کو عزت کیوں مل گئی, اس کے لوگ پوچھتے ہیں مجھے کوئی نہیں پوچھتا, اس کو آگے بٹھاتے ہیں مجھے پیچھے بٹھاتے ہیں, اس کی بات سارے مانتے ہیں میری بات کوئی بھی نہیں مانتا. یہ اندر ہی اندر جو بیماری پکڑتی ہے نا اس کی وجہ سے بھی معاشرہ خراب ہوتا ہے. اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے.
It definitely does, and it's part of understanding that Islamic society puts a lot of stress on this, about the protection of another Muslim, about the respect of another Muslim. How much sometimes we forget or we don't acknowledge that it's not just me, myself and I. It's not just about me, 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 oh, meh, meh, meh. Okay, we hear this all the time. We're part of something a lot bigger. We're part of an ummah, and not just any ummah, the best of ummahs.
Subhanallah.
This is a big responsibility on us, and we have a massive effect on not just ourselves, not just our families, not just our communities, but the whole society. We're a part of this, and we need to take this seriously. So when we're talking about other Muslims and falling into these traps, about talking ill of them or having bad suspicions or, you know, lying and cheating and whatever else that, you know, goes on. And we know too well how easily and how common these things are. We need to understand that this is a Muslim. This is an ummati of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that I'm talking about. This is somebody that I need to give that respect to, because this is the hukum of Islam. And this is the way that once you understand the status of the other person as an ummati of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, hopefully we'll start giving them that protection, that respect, that status that they deserve as being an ummati and a Muslim. And that Islamic society, when we start treating each other well like this, that Islamic society will build, and you know, together that unity will be a lot stronger, inshallah.
Bishop.
Shah sahab, do galan tumhe khali gal kar sam ke islami maashre vich ni ek hai ke jehde asan azadi jehdi hai na eh asan jis tarah bachyan ki ta apne aap kisne keha main azad haan main jo vi chahna karna chahna ke chahna main koi puchne lena hoya main usse ki jawab dene waste na hoa jo vi main karan ohi main karan usse ki jawab na dena eh jehda bande ne soch honi na fir banda ya ad to agge guzri jana hai تو جلا ٹینا نا اتنا سخت ٹینا پتہ نہیں لگنا کیا ہوا اسلامی طور پہ تو کہہ جائے نا ٹھیک ہے آزادی ہے لیکن اس نے کچھ کنڈیشن بھی ہے
فریڈم وتھ لمیٹیشن
فریڈم وتھ لمیٹیشن ہونی تو اللہ تعالیٰ اساں کی پیدا کیتا اساں کی زندگی دی اساں کی عقل دی دماغ دی یہ استعمال کرو تو جس طرح دین ہے اس نے دور پر ٹرو تو چون زندگی سے گزار سو اس تو باہر جا سو نا تو بندہ اس طرح اسی طرح بندہ جانور نہیں ہونے جنگلے تو نکلے ہوئے اس طرح سر صاحب نے کہ اساں جس طرح اسلام سا کی آہر ہے اس طرح زندگی گزارو اس طرح گزارو دی گل ہے ساری صحبت جڑا اساں اتے اختیار کرنے ہیں نا اگر چنگی صحبت کرساں تے سارے جڑے اعمال حسن چنگیا مندیا نال وہ سارا معاشرہ چنگا سی اساں اگر بریا نال صحبت رکھساں تے ظاہر ہے ساری جی معاشرہ سی وہ برے سی باقی نے جے تک سن کہ بندہ اس طرح آیا وہ پھر آٹومیٹکلی آکسن یہ خرابی ہے کیونکہ جی صحبت نے بندے کی بنائی سکنی بندے کی بگڑائی سکنی تو بہت ضروری ہے کہ اساں صحبت چنگی کی رکھاں تو جڑی آزادی نہیں یہ اساں لمیٹیشن رکھاں جڑے حق نے دوار آئے
فریڈم وتھ لمیٹیشن سے بات ہو رہی تھی اور بالکل شاہد بھائی تو پٹواری میں شروع ہو گئے چلیں جی قدرت بھائی جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے فرمائش کی شاہد بھائی نے آپ کی خواہش پوری کی ماشاء اللہ یہ بھی ایک اچھا ہے ایک مسلمان کی دل جوئی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ بھی جو ہے ایک اچھی چیز ہے معاشرے کے اندر کہ ہمیں ایک دوسرے کے خواہشات کا بھی خیال رکھیں جو کہ صحیح ہوں اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہوں اور اس سے جو ہے آپس میں محبت بڑھتی محبت کی بہت کمی ہے ارون بھائی بڑا پرابلم ہے اچھا ہمارا سکون جو برباد ہوا ہے نا ہماری پریشانیوں کی وجہ سے نہیں دوسرے کی خوشی دیکھ کے اپنا سکون برباد ہو گیا وہ ایک کسی نے سمجھانے کے لیے کہا کہ کچھ نے ایک نے دعوت کی دوست نے سب کو تو پانچ چھ آئے تو انہیں چائے کا ٹائم ہوا تو چائے ایک تھرمس میں آئی اور اس نے کپ منگائے پانچ چھ جتنے لوگ تھے اچھا اس نے بغیر دیکھے اچھا جو کپ تھے نا وہ الگ الگ تھے کوئی کرسٹل کا آیا کوئی پلاسٹک کا آیا کوئی گلاس کا آیا کوئی کسی چیز کا آیا انہوں نے الگ الگ مانگا کہ سب کو جیسے آپ لوگ ہیں اب ہم تو جیسے گلاس میں دیا نا پانی اب ادھر وہ کسی کو کرسٹل کا دیا ہو کسی کو گلاس کا دیا ہو کسی کو پیپر کا دیا ہو کسی کو گتے کا دیا ہو اب ہوا کیا چائے سب میں ڈالی ہے اب چائے نہیں پی رہے They're looking each other. اب کیا ہوا کہ وہ جو اصل مقصد کیا تھا چائے تھی اصل چیز تو چائے سے انجوائے کرنا تھی لیکن وہ دوسروں کے کپوں کو دیکھنے میں لگ گیا اس کو یہ کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا ہے اصل میں جو پینا تھا وہ تو چائے پینی تھی ٹیسٹ بھی چائے کا آنا تھا ہوا یہ ہے کہ سمجھانے والوں نے کہا کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کے ہر ایک میں دکھ سکھ ہیں آپ کی لائف میں بھی دکھ سکھ ہے میری لائف میں بھی دکھ سکھ ہے ہوا یہ کہ میں نے اپنے سکھ اور اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے کی جو اچھی ہے وہ اس کو کیسے ہوگی حالانکہ اصل مقصد تو لائف کو کرنا تھا نا اصل مقصد تو چائے تھی جس طرح چائے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے کپ کو دیکھنے میں لگ گئے چائے سب کی ایک جیسی تھی سب کو زندگی ملی ہے دکھ سکھ سب کے ساتھ ہے کوئی ایسا نہیں جس کو دکھ سکھ نہ ملو لیکن ہمارا اس وقت معاشرے کے اندر جو بدحالی کا حال ہے پرابلم وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے بس وہ جو کہا می می اینڈ می اور پھر وہ آئی آئی اور آئی ہو جاتا ہے اور پھر وہ جا دیکھوں میں ہی میں ہوں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا یہ ایک بڑا پرابلم ہے
and unfortunately Shah Sahab it's become a very big obstacle meaning you know they're not able to understand the concept of the taqseem of Allah subhanahu wa ta'ala for a Muslim this is enough that what Allah has destined for me I will get. We've discussed this many times in many different topics that, you know, being envious or jealous of someone will not miraculously make your sustenance or your provisions increase and his decrease. And that's not the way nature works. Since I came across a you could say, a part of the book from Imam Ghazali, the beginning of guidance, and it was a short parable, and I thought to myself when thinking about today's topic that it aligns perfectly with our today's topic.
Mashallah.
And you could say that it's sort of like a message for the ideal Muslim. Imam Ali rahmatullah ta'ala, he says that if you see a child, you should say to yourself, this child has not transgressed against Allah. He's not sinned, and I have, so certainly he is better than me. If you see an older person, say that this person is better than me because he has been worshipping Allah for longer than me. He is more in age, he's been worshipping for longer. If you see a knowledgeable person, then say that this person has been given that which I have not been given and has reached in rank that I have not reached, and he knows that which I am ignorant of. So he is better than me. How can I be like him? If you see an ignorant person, a jahil person, say that this person, he may have sinned against Allah Azza wa Jal, but in ignorance, whilst I have done it knowingly. I have done it purposely.
Allah.
So Allah's evidence against me is greater. And what do I know about my final state at death? And what would be my final state when it comes? So here he puts into perspective
every angle.
Younger person, older person. Alim, jahil. And he's sort of admonishing you. And this, I think, is a lesson for each and every one of us and those who are watching, that never think because he's higher in rank or he's lower in rank, I'm better than him. I think in here, Imam Ghazali, he's what he's indicating towards is the final state, that you could be the most pious person, but you know the khufiya tadbir of Allah subhanahu wa ta'ala could be that you end up in a state which is not like this. So we should always, always, always fear our ending. And do dua that, Ya Allah, give me istiqamat upon iman, upon deen, and take me away from this world in a state that I am a believer. Because without that, your umrahs, your many, many nawafil and many good deeds are futile. They're of no use if you don't have a good ending.
MashaAllah. Taqeeb bhai, badi pyari inhone baat ki. Yani har angle se dekhe. Banda apne aap ko aajizi samjhe. दूसरे को बड़ा ही, दूसरे को अच्छा ही समझे अपने से. बड़े को देखे तो इसकी उम्र ज्यादा है, नेकियां ज्यादा होंगी. छोटे को देखे तो भाई इसके, इसकी उम्र कम है तो इसने इतने गुनाह नहीं किए होंगे, मेरी उम्र ज्यादा. यानी कि हर एंगल से अगर देखा जाए, इन वाले को देखे तो उसकी अपनी मिसाल दी. बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह.
डेफिनेटली इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला, ही वाज अ मास्टर ऑफ दिस. दैट व्हेन यू रीड हिज बुक्स, व्हेन यू आर एबल टू स्टडी हिज वर्क्स, यू विल फाइंड दैट माशाल्लाह ही वाज अ मास्टर. दैट He would literally, as you're reading through his writings and his works, you would expect that this particular parable, this paragraph, this is for me. He's literally straight, directly addressing me. That's what Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala, his works are like that. And he, in his works, he would take all angles into consideration. So a person doesn't think that, okay, that's not for me. Because unfortunately, this is the society that when we are listening to a sunnah inspired bayan, for example, or even in our silsila today, when we are mentioning something, many people will be thinking that he's talking about such and such person.
Yeah.
But Imam Ghazali, rahmatullahi ta'ala, his quality was that in his writings, how many thousands of years have passed by? But still, we will find that when we are going through his works now, he covers all angles that we cannot find ourselves that, okay, maybe that angle we are out of. But the next one, we'll find ourselves trapped in there. Oh, and if not that one, then the next one. So like this, Imam Ghazali, rahmatullahi ta'ala, in his works, he covers all angles and he tries to cover everyone in that little short amount of writing that he, rahmatullahi ta'ala, wrote. And this is a big problem as well, that many of us, like you mentioned, that we are always looking at other people. We don't ever think that when some nasiha is being given, some advice is being given, that advice is for me.
Yeah.
Always, our mindset should always be that this advice is for me, not for anyone else, for me. But what happens is our mind is triggered in such a way that we're so normal and so used to that whenever we hear anything, we think that, oh,
someone else.
Who can this fall upon? It's him. But we've got all of those qualities in ourselves. We won't think that is me. We will think it's him. Oh yeah, that person that I met 10 years ago, he had this problem. But the person that woke up from the bed in the morning, looked at his face in the morning, that person won't come into his mind, your own self. Everything else, it will come into, everyone else will come into mind. Another point I would like to add on here, you mentioned earlier about when you're looking at other people. Another aspect with this is nowadays, we like to compare ourselves with other people. We live in the day and age of social media. And there's a huge presence of social media influences on the social media. this is a becoming a job in itself, an occupation in itself, a social media influencer. And what they do is they post certain things of their life and people start comparing their life with that person's life. And they think that, oh, look, he's got such and such a good life. He's got such and such. And I'm facing so many problems. He's not facing all of the problems. What we need to realize is that these influencers that are on social media, they will only post those things that will make them look good. You will never ever find anyone posting something on social media that will give him the bad limelight. You will always post something that will make him look good. So don't get into this thing that you need to compare yourself with someone else. You have been given what Allah has given you. You've got your own qualities. That individual, he's got his own qualities. And you're going to have your problems. That individual is going to have his own problems. Maybe you are not aware of his problems, but that doesn't mean that he doesn't have any problems. Definitely some sort of problems and difficulties would have come into his life. But maybe he's got a way that he can deal with those problems. So you need to adopt that lifestyle that you can deal with your problems. Always turn back towards Allah subhanahu wa ta'ala. Continuously make dua in the court of Allah in terms of all of these issues and problems. And this is also part of an Islamic society dua.
Bishop, subhanallah.
Very important part of Islamic society dua. The Prophet sallallahu ta'ala has told us that dua, this is the weapon of a believer.
Bishop.
And we need to, inshallah ta'ala, constantly turn back towards Allah. I mentioned earlier as well that when we look at the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in every scenario that we come into our life, we turn back towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Look at the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we will find that whenever any major thing was to happen in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would turn towards Allah and make dua. Look at the example of the Battle of Badr. Such a huge event in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first major battle of Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the night before, he spent making dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So all of these major aspects of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he always turned towards Allah subhanahu wa ta'ala. Today what happens to us is we turn to everyone else, we don't turn towards Allah. We look at all other asbab, all other causes to get rid of the problem, but we don't look towards the Malik of all asbabs, Allah subhanahu wa ta'ala, the cause of all causes, Allah subhanahu wa ta'ala. We don't turn towards him subhanahu wa ta'ala. And this is the message that I would like to give, that we need to turn towards Allah. This will bring an Islamic society.
Many things Taqir Bhai has compiled, mashallah. Turn to Allah before you have to return to Allah. Apne aap ko pehle hi us taraf le jaiye. Dua ki inhone baat ki, ya dua wa mukhul ibadah, dua ibadat ka maghz hai. Ud'uni astajib lakum. Ab hamara kya hota, hum dua bhi mangne ka nahi, uske liye kyun dua mango? Bhai dua mango, uska bhala hoga, tumhara bhala bhi hoga. सबका भला सबकी खैर सबके भले में अपनी खैर दुआ मांगने में भी कंजूसी करते हैं हालांकि कि दुआ मुझसे मांगो मैं दुआएं कबूल करता हूं रब अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है लेकिन दुआ भी नहीं मांग रहे होते अच्छा भाग यानी उस किसी की बर्बादी के लिए क्यों दुआ कर रहे होते दुआ मांगो अल्लाह तमाम मुसलमानों की खैर फरमा अल्लाह करम करे में उसको दिया अल्लाह उसको और बरकत दे वो दुआ आपकी हक में पहले कबूल होगी पढ़े तो सही कि दुआ मांगने से किसी और के लिए आपके हक में वो दुआ पहले कबूल होती है फरिश्ते आपके लिए वो दुआ कर रहे होते हैं आमीन कह रहे होते हैं कि ये दुआ इसके लिए हक में कबूल हो जाए और हम दुआ भी नहीं मांगते उसके लिए एक शख्स की दुआएं बड़ी कबूल होती थी रीजन पता है क्या था वो कहता मैं घर से निकलता था जो मिलता था उसके लिए दुआ करता जाता था उसकी दुआएं कबूल हो रही होती थी क्योंकि दुआ दूसरों के लिए मांग रहा हो रहा होता था हमारे यहाँ कंपैरिजन और ये सारे नहीं उसके लिए क्यों करूंगा अपने को कंपेयर ना करें अल्लाह अज़्ज़ा वजल हैज़ गिवन एवरीवन ऐसी क्वालिटी जो दूसरे में नहीं होती आप करेंगे ना आपका अपना सुख चैन बर्बाद हो जाएगा जैसे मैंने पहले एक दफा मिसाल दी टमाटर भी रेड होता है टोमेटो इज रेड एंड रोज फ्लावर वो भी एक रेड होता है दोनों खूबसूरत होते हैं लेकिन खूबसूरत क्या ज्यादा होता है रोज फ्लावर अच्छा लगता है सूंघते खुशबू लेकिन खाने में थोड़ी डालते हैं उसकी अपनी क्वालिटी सूंघने की वो दिखता अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़ी कि टमाटर को उठाकर सूंघते रहेंगे टमाटर खाने में डलने के लिए खाने के लिए और जो गुलाब का फूल होता है वो खुशबू के लिए सूंघने के लिए होता है अच्छा लगता है हर एक की अलग क्वालिटी है हर एक का अपना एक चीज है हम खामखा एक कंपेरिजन के अंदर लगते हैं तो अपना सुख चैन बर्बाद कर देते हैं वाला टाइम कम है माशाल्लाह रिजवान भाई और इनसे आखिर में क्या क्या मदनी फूल देना चाहते हैं इंशाल्लाह
Just touching on the point of comparisons and who we're comparing to, and we hear this Madani Pool time and time again, but it's worth going over that when we're looking at comparing ourselves in the worldly matters, we should always look at those who are maybe less fortunate than us, and who have got more problems than us, who are in difficulties. And in the dini, the religious matters, we should try and aspire to those who are got more knowledge and doing more worship than us. And in this way, we'll always try and better ourselves. And that's the way we should try and compare ourselves. Regarding Islamic society, I just wanted to finish with one final Madani pearl that I wanted to come across. And I think we touched upon it a couple of times at the start, that look, we've got the guidance in the form of the Quran. And we've got guidance in the form of the final prophet, sallallahu alayhi wa sallam. And if on these two things we focus on, the Quran has so many stories, so many waqiyat, so many lessons, and so many commandments in there, that if we start to read it, inshallah, even if it's a small amount each day, with the translation, with the commentary, to try and understand what lessons we've got in there, as well as fulfilling our maqsad, fulfilling our purpose, which is to worship Allah Almighty, which is part of Islamic society, we'll also be learning more about how to achieve that Islamic society as well, inshallah. And similarly, the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is so important. And learning both of these things, you know, we've got to be really careful how we approach this, because it's, you might have the best of intentions, the best of will intentions, and say, I'm going to do this. And you go, you need to be careful what sources you're going to. For example, if you're a complete beginner, you need to start taking small steps. You need to maybe look at a book that's written for your level. So maybe look at what you're, where you're getting your information from. And it's very important that you're taking it in bite size so that you get that istiqamah, inshallah, and then build upon it, build upon it, build upon it. And you'll get the lessons on how to get that Islamic society, inshallah.
MashaAllah. Shahid bhai, kya aap message dena chahte?
Just one message, Shah Sahab. Today, we're very quick at looking at other people and making them as role models, thinking that, yeah, this is the kind of person I want to be a. But what we should look at is the perfect role model, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the ideal role model for the entire universe. Sayyidina Ibrahim, he mentions about, you know, how he questioned his nafs, whether he wants hell or salvation from hell. And he, the hell says, I want salvation from hell. He says, well, if that is what you want, today you have the opportunity to good, do good deeds so that you can have, get salvation. What are our actions like? Today we got the time. If we want, you know, to make the ideal Islamic society, we got this opportunity before it's too late for us.
MashaAllah. Harun bhai, aap kya message dena?
Says up to be an ideal Muslim, I think first we need to reflect within our relations and be an ideal son, an ideal husband, an ideal father, an ideal friend, and an ideal sibling. When inshallah we fulfill all these rights of these people around us, inshallah, I think a lot of that will contribute towards becoming an ideal Muslim. Because that will be a reflection of your character, and inshallah help you to sharpen yourself up, and inshallah brush yourself up, and work towards becoming a better and ideal Muslim.
MashaAllah. Akhir mein main ye kahunga, acha sochi, always think positive, things good, and speak always good. Acha karat, kyunki badgumani aur badzabani do aise aib hain jo insaan ke har kamal ko zawal mein tabdeel kar dete hain. Aapke andar badi qualities hain, log bade acche hote hain, lekin unki zuban itna, unka attitude itna bura hota hai ki wo unki jo bhi tamam khoobiyan unke upar ye haavi ho jate hain. To ye zuban jo hai aur attitude jo hai aur sochna, ye bahut count karta hai. Allah humko acha sochne aur acha bolne wala banaye. Apna bahut khayal rakhiyega. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge